ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। महाराज हिंदी में करें कि इंग्लिश में करें? हिंदी बुक दो, हिंदी बुक दो। हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 10 अध्याय 7 त्रिणावत का वध, श्लोक संख्या 19। भूमौ निधाय तम गोपी, भूमौ निधाय तम गोपी, विस्मिता भार पीड़िता, विस्मिता भार पीड़िता, महापुरुषम आधाद्यौ, महापुरुषमादध्यौ, जगताम आसकर्मसु, जगताम आसकर्मसु, भूमौ निधाय तम गोपी, विस्मिता भार पीड़िता, महापुरुषमादध्यौ, जगताम आसकर्मसु, भूमौ निधाय तम गोपी, विस्मिता भार पीड़िता, महापुरुषमादध्यौ, जगताम आसकर्मसु। माता जी, भूमौ निधाय तम गोपी, विस्मिता भार पीड़िता, महापुरुषमादध्यौ, शब्दार्थ भूमौ जमीन पर, निधाय रख कर, तम उस बालक को, गोपी माता यशोदा, विस्मिता चकित, भार पीड़िता बच्चे के भार से दुखित, महापुरुषम विष्णु या नारायण को, आदद्धौ शरण ली जगताम। मानो सारे जगत का भार हो, आसा अपने को व्यस्त किया कर्मसु घर के अन्य कामों में। अनुवाद तथा तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद की। बालक को संपूर्ण ब्रह्मांड के बराबर भारी अनुभव करते हुए, अतएव यह सोचते हुए कि बालक को कोई दूसरा भूत प्रेत या असुर सता रहा है, चकित माता यशोदा ने बालक को जमीन पर रख दिया और नारायण का चिंतन करने लगी। उत्पात की आशंका से उन्होंने इस भारीपन के शमन हेतु ब्राह्मणों को बुला भेजा और फिर घर के कामकाज में लग गई। उनके पास नारायण के चरण कमलों को स्मरण करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प न था, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाई कि कृष्ण ही हर वस्तु के मूल स्रोत हैं। तात्पर्य, माता यशोदा यह नहीं समझ पाई कि कृष्ण वस्तुओं में से सबसे भारी और वे सबों के भीतर निवास करते हैं। मत्स्थानि सर्वभूतानि, भगवत गीता में पुष्टि की गई है, मया तदम इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना। कृष्ण अपने निर्विशेष रूप में सर्वत्र विद्यमान है और सारी वस्तुएं उन्हीं पर टिकी हुई हैं। फिर भी न चाहम तेष अवस्थित, कृष्ण सर्वत्र नहीं रहते। माता यशोदा इस दर्शन को नहीं समझती थी, क्योंकि योग माया के योजना अनुसार वे कृष्ण की माता के रूप में उनके साथ व्यवहार कर रही थी। कृष्ण की महत्ता को न समझ सकने से वे कृष्ण की सुरक्षा के लिए केवल नारायण की शरण ले सकती थी और इस दिशा के शमन हेतु ब्राह्मणों को बुला सकती थी। अनुवाद दोहराइए। बालक को संपूर्ण ब्राह्मण के बराबर भारी अनुभव करते हुए, अतएव यह सोचते हुए कि बालक को कोई दूसरा भूत प्रेत या असुर सता रहा है, चकित माता यशोदा ने बालक को जमीन पर रख दिया और नारायण का चिंतन करने लगी। उत्पात की आशंका से उन्होंने इस भारीपन के शमन हेतु ब्राह्मणों को बुला भेजा और फिर घर के कामकाज में लग गई। उनके पास नारायण के चरण कमलों को स्मरण करने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प न था, क्योंकि वे यह नहीं समझ पाई कि कृष्ण ही हर वस्तु के मूल स्रोत हैं। ओम ज्ञानते मेरे अंदर से ज्ञान अंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगणा ललिता श्री विशाखावितंश्च। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो समस्त वैष्णव का आशीर्वाद लेके, स्पेशली परम पूज्य अनंत कृष्णदास गोस्वामी महाराज जी का आशीर्वाद लेके हम इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट मैटर श्रीमद् भागवतम और उसमें भी दशम स्कंद पे थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीड़िता महापुरुषम आदध्यो जगताम आसकर्मसु। तो अभी इसके पहले पूतना वध हुआ। पूतना का वध होने के बाद, पूतना छह दिन, भगवान छह दिन के थे जब पूतना का वध हुआ और भगवान 100 दिन के थे जब सकटासुर, जब छकड़े को तोड़ दिया भगवान ने, और लगभग 1 साल के थे भगवान का उम्र, लगभग 1 साल हुआ तब ये तृणाव्रत आया था। तो अभी जस्ट कल के ही श्लोक में, 18 नंबर श्लोक में, परसों जो हमने, कल तो एकादशी थी, उसमें भगवान भारी हो जाते हैं। एक दिन कृष्ण के आविर्भाव के 1 वर्ष बाद माता यशोदा अपने पुत्र को अपनी गोद में दुलार कर रही थी, तभी सहसा उन्हें वह बालक पर्वत की चोटी से भी भारी लगने लगा, जिससे वह उसका भार सहन नहीं कर पाई। तो भार सहन नहीं कर पाई, आज के श्लोक में आता है ना, भार पीड़िता, इतना भारी हो जाएगा बच्चा तो कैसे संभालेंगे। तो क्यों भगवान भारी हुए, आचार्यों ने इस पे अलग अलग टीकाएं दी हैं, अपने रियलाइजेशन को शेयर किया कि हम लोग आस्वादन कर सके और समझ सके। भगवान कोई भी एक कार्य करते हैं तो उसमें बहुत सारे कारण होते हैं, तो क्यों भारी हो गए उसके भी कुछ कारण है। ऐसे ही भगवान कुछ नहीं करते, जो भी कुछ करते हैं भगवान उसके पीछे बहुत लॉजिक होते हैं, उसमें से कुछ हमको मिलता है। तो एक कारण है भगवान भारी हो गए, भगवान जो है वो अक्षर हैं, शर नहीं होता जिनका, अक्षर, और अपनी माता के साथ हैं। अब कोई भी अक्षर लीजिए आप, जैसे म, म एक अक्षर है, और अगर वो मात्रा के साथ, माता मतलब मात्रा, अगर मात्रा के साथ आ जाए तो वो क्या हो जाता है, भारी हो जाता है, मां हो जाता है, या प होता है तो पा हो जाता है। तो कोई भी मात्रा के साथ, या ई की मात्रा या ऊ की मात्रा, जब अक्षर के साथ मात्रा जुड़ती है तो अक्षर भारी हो जाता है। तो कृष्ण अक्षर हैं और अपनी माता यशोदा के साथ जुड़ गए तो भारी तो होना ही है। समझ में आ रहा है, अंग्रेजी मीडियम के महाराज अभी क्या बताएंगे, हिंदी कख गग भी बहुत लोग को नहीं आता है यहां पे, तो बट मात्रा तो समझते हैं ना। तो मात्रा जब जुड़ा तो कृष्ण हो गए भारी, एक ये कारण हुआ कृष्ण के भारी होने का। दूसरा कारण था तृणाव्रत किस रूप में आ रहा है। एक्चुअली तृणाव्रत का नाम तो तृण था, वो तृण के रूप में आ रहा था, फिर तृणाव्रत क्यों हो गया नाम, क्योंकि उसने अपने आप को आवृत कर लिया तृण से, इसलिए वो राक्षस का नाम पड़ गया तृणाव्रत। आगे आएगा तृणाव्रत नाम अगले श्लोक में। दैत्य नामना तृणाव्रत। तो तृणाव्रत नाम क्यों पड़ता है? क्योंकि अपने को तृण से आवृत कर लिया। उसका कोई रूप नहीं था, निरंकारी बाबा था, उसका रूप नहीं था कुछ, उसको श्राप मिला हुआ था। तो आवृत कर लिया अपने आप को तृण से, और वो भी आगे कारण बताया जाएगा क्यों आया था बदला लेने। एक तो कंस ने भेजा था, दूसरा छकड़े को मारा था ना कृष्ण ने। तो तृणाव्रत सोचता है कि मुझे, मैं तो जंगल में उगता हूं, घास जंगल में उगता है, मुझे जंगल से लेकर शहर तक, नगर तक जो सवारी कराता है छकड़ा, उसको तोड़ दिया कृष्ण ने, इसलिए बदला लेने आया। पहले के असुर लोग भी लॉजिकल होते थे, आज के पढ़े लिखे लोग भी इलॉजिकल होते हैं, ये फर्क है। पहले के असुरों में ज्ञान था, ब्राह्मणों की शक्ति को जानते थे, भगवान विष्णु को जानते थे। आज के कितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो नहीं जानते। तो एक ये कारण कि छकड़ा क्या करता है, वो गाड़ी क्या करती है, गाड़ी के रूप में था, उसका भी कोई अपना रूप नहीं था, वो छकड़े के रूप में घूमता था। तो उसको तोड़ दिया, यानी मेरा, मैं जिस पे सवारी करता हूं उसको तोड़ दिया कृष्ण ने, तो मैं बदला लूंगा। दूसरा कि इनकी जो ब्रजवासी हैं, गाय कितना महत्वपूर्ण है, गाय तो प्राण है ब्रजवासियों का, और इनका पूरा इकोनॉमी चलता है गाय पे। प्रभुपाद जी बहुत बार समझाते हैं, गांव का इकोनॉमी पूरा गाय पे चलता है। इवन खेती भी होती है, उसमें भी जो खाद होता है वो गाय से आता है, बेस्ट खाद होता है। हमारा जब तलासरी में बहुत साल पहले, 7-8 साल पहले, जब उतना उगता नहीं था क्योंकि पानी नहीं है ना भूमि में, तो इतना घास नहीं उगता था, तो क्या करते थे कि इस एक क्षेत्र में गायों को रख दिया जाता, गाय घूमेगी वहां पे, गोमूत्र गोबर दे देगी, और उस गाय के चरण बहुत पवित्र होते हैं, तो वो बंजर भूमि को भी वो वहां पे अनाज उग जाता है। तो इसीलिए आज आप जो देख रहे हैं, ये बहुत साल का मेहनत के बाद आज हर जगह वहां पे कुछ ना कुछ उग जाता है। तो जो तृण को लेके आता है सकटासुर, उसको मार दिया, जो इनका जीवन चलाता है, तो इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं कृष्ण को। और फिर कंस ने तो भेजा ही था, ऐसा अघासुर भी आएगा ना आगे चल के। अघासुर अपने भाई बहन का बदला भी लेना चाहता था और कंस ने भी भेजा था, तो इसके भी दो उद्देश्य थे। अब तृणाव्रत किस रूप में आ रहा है? वायु के रूप में, चक्रवात के रूप में आएगा, मतलब वायु अस्त्र लेके आ रहा है। तो अगर आपको थोड़ा शस्त्र ज्ञान होगा, महाभारत देखे होंगे बचपन में, तो हर अस्त्र को काटने के लिए दूसरा अस्त्र होता है। तो वायु अस्त्र को काटने के लिए, भेदने के लिए जो दूसरा अस्त्र होता है वो होता है पर्वत अस्त्र। तो कृष्ण का जो सो कॉल्ड दुश्मन है, वो कृष्ण से लड़ने आ रहा है, किस लिए? कृष्ण को मारने आ रहा है। कैसे आ रहा है? वायु अस्त्र से। कृष्ण बोले ये वायु अस्त्र में आ रहा है, मैं पर्वत अस्त्र धारण कर लूंगा, पर्वत उठाने की जरूरत नहीं, मैं खुद पर्वत जैसा बन जाऊंगा। तो ये कारण हुआ कृष्ण भारी हो गए। उसको काउंटर एक्ट करने के लिए, काउंटर करने के लिए वायु अस्त्र को। एक और कारण है भारी हो गए, यशोदा के साथ कृष्ण थे, तृणाव्रत आता तो यशोदा को भी उठा ले जाता। अगर कृष्ण हल्के होते तो यशोदा माता को भी कृष्ण के साथ ले जाता, तो उसमें क्या नुकसान होता? यशोदा, यशोदा का एक नाम भी है यशोदया, जो यश और दया से भरपूर है, जो यश बढ़ाती है और दया भी है, दयावान है यशोदा माता। तो कृष्ण बोलते हैं युद्ध करने जा रहा हूं या दयालु माता को लेके जाऊंगा तो लड़ने नहीं देगी, मेरे को मारने नहीं देगी ना। जैसे माता सीता को राम अलग रखे असुरों को मारते वक्त, क्योंकि नहीं मारने देती, तो माता का हृदय है। तो ये दयावान यशोदा जो है, अगर उसको भी तृणावर्त साथ में लेके जाएगा और मैं फिर तृणावर्त को मारूंगा तो यशोदा रोक देगी, मुझे नहीं मारने देगी। और ऐश्वर्य भी प्रकट हो जाएगा कृष्ण का, जो नहीं चाहते थे। तो इसीलिए बोले ये यशोदा को अलग करना पड़ेगा मेरे से। तो ये एक कारण, ये कुछ कारण जो भारी होने के बताते हैं। अब इसमें भूमौ निधायतम गोपी, हिंदी में जमीन पर लिखा है, जमीन उर्दू वर्ड है। भूमौ निधायतम गोपी मतलब भूमि पे रख दिया गोपी ने। क्यों भूमि पे रखा, इसके पीछे भी कारण होना चाहिए। पलंग पे भी रख सकती थी, पलंग टूट जाता वो अलग बात है, पर्वत हो गया तो फिर पलंग टूट जाता, सोफे पे रख देती, भूमि पे क्यों रखी? भूमि से इम्यूनिटी बढ़ती है। जो बच्चे मिट्टी में नहीं खेले हैं उनकी इम्यूनिटी वीक होती है। आजकल सब मार्बल में या ग्रेनाइट में या अलग अलग कारपेट पे खेलते हैं, लेकिन भूमि से टच नहीं होता है। एनीवेज ये कारण नहीं था, कृष्ण तो ऑलरेडी भूमि में खेल रहे थे। भूमि पे इसीलिए रखे क्योंकि सात माताओं में भूमि एक माता है ना। तो यशोदा सोच रही है कि भूमि भी तो माँ है कृष्ण की, सात माताओं में एक माँ होती है, तो ये भी माँ है। अगर मैं नहीं संभाल पा रही हूं, कृष्ण इतना भारी हो गया, तो भूमि तो बड़े बड़े पर्वतों को धारण करती है, तो मेरे पुत्र को ये संभाल लेगी क्योंकि ये भी इसकी एक माँ है, इसलिए भूमि पे रख दिया। अब यशोदा तो भगवान की नित्य माता है, शाश्वत माता, लेकिन यशोदा के अंदर है एक और माता जिसका नाम है धरा। धरा और नंद बाबा कौन है, द्रोण। धरा और द्रोण ने तपस्या किया, वो चाहते थे कृष्ण के माता पिता बनना। तो ऐसा नहीं कि धरा जो है वो यशोदा बन गई, धरो यशोदा नहीं बनी, यशोदा तो शाश्वत माँ है। तो धरा जो है उसको शरण मिलती है यशोदा के शरीर में, तो वही उनको क्या होता है, जो आनंद मिलता है, आस्वादन करती है लीला का, वो बराबर मिलता है। तो धरा भी यशोदा है, और धरा का मतलब क्या होता है, भूमि। तो कृष्ण की मां का नाम ही धरा है, तो मैं भी धरा हूं यशोदा सोच रही है, ये भी धरा है, तो इसीलिए भूमि पे रख दिया। भूमौ निधाय तम गोपी, गोपी ने क्या किया, भूमि पे कृष्ण को रख दिया। फिर कहते हैं विस्मिता भार पीड़िता, विस्मित होके, अरे हैरान हो गई थी। ये पहला केस हुआ था जो डायरेक्ट कृष्ण के साथ माता यशोदा को इतना हैरानी हुआ, क्योंकि पहले जब पूतना लेके गई थी तो उतना हैरानी नहीं, तब डर था। फिर सकटासुर आया, उसमें भी उतना ध्यान नहीं दिया था। धीरे धीरे जैसे आगे चल के तो फिर क्या होगा, हाँ भगवान मुख में ब्रह्मांड दिखाएंगे। तो यहां पे चकित हो गई कि हुआ क्या है यश कृष्ण को, एक साल का बच्चा कितना भारी हो सकता है। यहां बोला गया कि पर्वत की चोटी से भी ज्यादा भारी हो गया। एक साल का बच्चा को लोग खेलते हैं ऐसे, उछालते हैं ऊपर, कैच करते हैं, ये इतना भारी हो गया कि यशोदा माता उसको पकड़ नहीं पा रही, संभाल नहीं पा रही, तो चकित हो रही है। माता यशोदा की लीला में आप देखोगे, कृष्ण और यशोदा की लीला में शारीरिक थकान तो होती है जैसे दामोदर लीला में, लेकिन मानसिक थकान ज्यादा हो जाती है यशोदा को, हर लीला में देख लो। और ब्रह्मांड घाट पे जो ब्रह्मांड दिखाया, उसके बाद क्या हुआ यशोदा का, परेशान हो गए। लेकिन हर बार परेशान होके जाती कहां है वो देखना चाहिए। ब्राह्मणों के पास, भगवान नारायण के पास, वहां पे ब्रह्मांड घाट पे शिव जी के पास चली गई, क्योंकि बाजू में चिंतारण घाट है। शिव जी को प्रार्थना कर दी कि क्या है। तो मेंटल एंजाइटी बहुत है। माता यशोदा नित्य शाश्वत ये कन्विंस्ड हैं कि अगर मैं नहीं खिलाऊंगी कृष्ण को तो कृष्ण भूखा रह जाएगा, अगर मैं देखभाल नहीं करूंगी कृष्ण को तो कृष्ण बीमार पड़ जाएगा या कोई मार देगा। वो कन्विंस्ड है इटर्नली। प्रभुपाद जी एक मॉर्निंग वॉक में कहते हैं कि भगवान के भक्त शांति नहीं चाहते, भगवान के भक्त शांति नहीं चाहते, तो ओम शांति, क्या शांति, वो शांति, ये सब नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते देखो यशोदा को एक क्षण की भी शांति है क्या उसके पास? कॉन्स्टेंट एंग्जाइटी। और प्रभुपाद कहते हैं जो ये कॉन्स्टेंट, जो निरंतर ये एंग्जाइटी लेता है, चिंता करता है भगवान के लिए, चिंता तो यहां पे सब करते हैं। एक वो धाम है चिंतामणि और उसका रिफ्लेक्शन है चिंता, और चिंता किसकी? मणि की चिंता। तो यहां पे चिंता मणि है, वहां चिंता मणि है, पर चिंता तो बहुत है यहां पे। प्रभुपाद जी थर्ड कैंटो जो लेक्चर देते हैं, एक जब भगवान कपिल देव माता देवहूति से कहते हैं कि साधु साधु में अपना आसक्ति लगाने से क्या होता है, द्वार खुलते हैं मुक्ति के। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हर जगह हमारी आसक्ति लगी हुई है, ऐसा कहीं नहीं आसक्ति नहीं है, और आसक्ति आप खत्म कर नहीं सकते। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं जो शराबी है, जो शराबी व्यक्ति है उसको शराब न मिले तो उसको बड़ा बेचैनी होती है, जो सिगरेट पीने वाला है अगर एक घंटा सिगरेट न मिले, प्रभुपाद जी बोलते हैं एक घंटा सिगरेट नहीं मिला तो उसका गला सूखने लगता है। जब आपको वैष्णव का संग नहीं मिलेगा और ऐसे विचलित हो जाओगे, बेचैन हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, तब प्रभुपाद बोलते हैं आप मुक्ति मार्ग पे आ गए, तब आपका उद्धार हुआ है। जब कृष्ण को नहीं देखा कुछ समय के लिए, कृष्ण की सेवा नहीं की, कृष्ण का नाम जप नहीं किया, भगवान के भक्तों को नहीं देखा, उनका सेवा नहीं किया, उनका संग नहीं किया कुछ समय के लिए, और आपको बेचैनी हो रहा है, समझते ना, ये मौसम में बेचैनी ज्यादा होती है, अजीब अजीब सा लगता है, है ना, प्रभु जी मेरा तबीयत खराब है, नहीं मौसम का है, तब आप भक्ति मार्ग पे अग्रसर हो गए, आप सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। जब वैष्णव के प्रति ऐसा भाव होगा, तो अभी हमारा कैसा भाव है, टाइम पे प्रसाद नहीं मिला तो, टाइम पे सोने को नहीं मिला तो, प्रभु जी अभी 15 सेकंड और था मेरा सोने का, आप मेरे को 15 सेकंड पहले उठा दिए। अभी हमारी ये, क्योंकि हम शारीरिक स्तर पे हैं तो हमारी चिंताएं भी शरीर से जुड़ी हुई हैं, मानसिक स्तर पे हैं तो मन से जुड़ी हुई चिंताएं, जब आत्मा के स्तर पे आएंगे तो आत्मा से जुड़ी चिंता होगी। और प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे ज्यादा चिंता कौन करता है कृष्ण की? माता यशोदा। तो एक भक्त, जब प्रभुपाद जी बता रहे थे तो एक भक्त ने कहा, प्रभुपाद कैसे हम भगवान के लिए चिंता कर सकते हैं? क्योंकि प्रभुपाद ने कहा चिंता करने से, जो भगवान की चिंता करता है वो सिद्ध हो जाता है। तो भक्त ने पूछा, प्रभुपाद जी कैसे हम भगवान की चिंता करें? तो प्रभुपाद कहते हैं उसके लिए भी चिंता करो। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हुए रोना चाहिए, प्रभु जी हमको तो रोना नहीं आता, तो इसीलिए रोइए कि आप रो नहीं पा रहे हैं जप करते समय। वो भी नहीं रो पा रहा हूं, तो इसीलिए रोइए कि मैं रो नहीं पा रहा हूं कि मैं जब मैं रोऊं, और पीछे चलते जाओ। अश्रु तो हमारे भी आते हैं, जब जब करते करते नींद आती है तब देखना थोड़े आंसू निकलते हैं, वो शुद्ध भक्ति का लक्षण है। किसकी भक्ति वो पता नहीं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं अगर कृष्ण के लिए चिंता करनी है तो उसके लिए चिंता करो, क्योंकि जो कृष्ण के लिए चिंता करता है वो तो निकल गया, वो यहां पे है ही नहीं। और कोई व्यक्ति कहता है कि मैं बहुत चिंता करता हूं कृष्ण के लिए, तो कैसे पता पड़ेगा? प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं, जो हिमालय पे साधु चला गया ठीक है, अच्छा है, अपना भला तो कर रहा है, नरक में तो नहीं जा रहा है, भौतिकवादी तो नहीं है, लेकिन उससे अच्छा है वो साधु, प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे बेस्ट साधु है जो वृंदावन छोड़ के पूरे भूमि पे प्रचार करे, प्रभुपाद खुद किए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं जिसने वृंदावन छोड़ा और सब जगह प्रचार किया वो परफेक्ट साधु है। तो जो प्रचार करता है, जो इस मिशन की चिंता करता है, क्योंकि कृष्ण और कृष्ण से संबंधित जो वस्तुएं हैं, जो भक्त हैं, वो सेम है, वो भी कृष्ण ही है। तो ये कृष्ण का मिशन है, ये महाप्रभु की चिंता है, और महाप्रभु ने अपनी चिंता को व्यक्त किया था कहां पे? हरिदास ठाकुर के पास। हरिदास ठाकुर से कहते हैं हरिदास कैसे उद्धार होगा इन मल्लेच्छ यवनों का? हरिदास ठाकुर कहते हैं प्रभु चिंता ना करी, आप चिंता मत करिए, हराम हराम बोलेंगे इन नाम से इनका उद्धार हो जाएगा। तो महाप्रभु का चिंता क्या है कि कैसे नाम पहुंचेगा? चलो ये तो पता पड़ गया कि उद्धार कैसे होगा, हरिदास ठाकुर ने बता दिया, लेकिन हरिदास नाम कौन पहुंचाएगा पूरे भूमि पे, पूरी पृथ्वी में नाम को कौन लेके जाएगा? तो वो चिंता महाप्रभु की है। और जो भक्त महाप्रभु की इस चिंता को अपने कंधों पे ले लेगा, पूरा तो नहीं थोड़ा सा भी सही, उसका उद्धार हो जाएगा, वो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रैक पे आएगा भक्ति के। और देख रहे हम, आप देख लीजिए पिछले 54 साल का इतिहास में इस्कॉन के, होते हैं ना हाईवे पे अलग अलग लेन होते हैं, एक स्लो होता है जिसमें ट्रक लोडेड ट्रक चलती है बहुत स्लो, फिर मीडियम होता है, फिर एक फास्ट ट्रैक होता है। तो फास्ट ट्रैक पे आ जाएंगे अगर कृष्ण के लिए चिंता करेंगे, तो कोई भी चिंता हो सकती है, आप प्रचार कर सकते हैं, आप मंदिर का देखभाल कर सकते हैं, ये सब चिंताएं करने से हम उस गति को प्राप्त करेंगे जो शुद्ध भक्तों की होती है, मतलब आप शुद्ध हो जाएंगे। जैसे ये अभी इतना बड़ा उत्सव आ रहा है, हाँ, वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल 17 तारीख से 23 तारीख तक, तो क्यों मनाया जा रहा है ये? क्या है उसका टैगलाइन? लेट्स मेक द वर्ल्ड फॉर्चुनेट। तो अभी एक हमने वेबसाइट, ये कीर्तन मिनिस्ट्री ने वेबसाइट बनाया जिसका हम अभी बताएंगे आजकल में सब भक्तों को, और उसमें क्या है, नए लोगों को अप्रोच कीजिए आप और उनको बोलिए कि आप एक हरे कृष्ण मंत्र बोलिए और वो रिकॉर्ड करके भेज दो, हम एक नंबर भी देंगे वहां पे। तो हमने जुहू से 5000 ऐसे मंत्र जप करवाने हमको, वो हमने अपना जो टारगेट रखा है। तो क्यों 5000? एक मंत्र जप करने में क्या होगा, बहुत कुछ हो जाएगा, क्योंकि जो नया व्यक्ति जप करता है वो नामाभास पे होता है। हम सब नामाभास पे थे जब जप चालू किया था, लेकिन बाद में क्या हो जाता है, प्रायः सभी लोग ऐसे ही जाते हैं, इस मार्ग से उठते हैं, कुछ लोग हैं जो ऊपर डायरेक्ट उठ जाते हैं, नामाभास से ऊपर चले जाते हैं शुद्ध, तो अपराध होते हैं। तो ये एक प्रचार का इतना अच्छा मौका है, कोई भी प्रचार बैठे बैठे प्रचार कर सकता है, पूरा ऑनलाइन है, आप किसी को भी अपना मित्र को या अपने बंधु रिश्तेदार है किसी को फोन करो, बोलना अपने फोन पे रिकॉर्ड करो क्या क्या करना है, अपना नाम बताना है, कौन से शहर से हैं, क्यों जप कर रहे हैं। मैं विश्व शांति के लिए जप कर रहा हूं, विश्व में शांति और प्रेम बढ़े इसीलिए ये मंत्र जप कर रहा हूं। और एक मंत्र जप करो, हो गया, रिकॉर्ड भेज दो। कितने लोगों का प्रचार कर सकते हो? ऑलरेडी इसमें 30,000 लोग हो गया, शुरू में तो 50,000 का टारगेट था लेकिन अब तो लाखों के पहुंचेगा। तो ये जो चिंता कर रहे हैं, जो प्रचार की, जो मिशन को आगे बढ़ाने की, ये उस परंपरा में है। तो यहां पे माता यशोदा को चिंता हुई, तो चिंता हुई तो क्या हुआ, महापुरुष, महापुरुषम आदद्यो, आदद्यो मतलब शरण लिया, किसका, महापुरुष का। कौन है महापुरुष? भगवान विष्णु या भगवान नारायण, भगवान नारायण का शरण लिया। तो ये भी आप एक देख सकते हैं, जो कल्चर था पहले, कुछ भी होता था जीवन में, भक्त नहीं भी होते थे पहले के लोग, पूरी तरह भक्ति नहीं जानते थे लेकिन तुरंत भगवान की शरण लेते थे, उस हिसाब से तो सब भक्त हैं। कुछ भी होता था भगवान की शरण लेते थे, वो कर्ता भाव कम था। अब क्या हो गया है, अब सारी फैसिलिटी हमारे पास है, तो हम सोचते हैं कि कुछ भी प्रॉब्लम मेरे जीवन में होगा तो मैं उसको सॉल्व कर सकता हूं। ये भाव है आज के मनुष्य का। मैं एक व्यक्ति से बात कर रहा था, भक्त नहीं है, भक्त नहीं है। मैं बोला कि वो डॉक्टर है, मैं बोला डॉक्टर साहब कुछ करो, 6 महीना हो गया कोरोना को जाने का नाम ही नहीं ले रहा। बोले नहीं, ये रहना चाहिए, ये भगवान दुनिया के लोगों को सिखा रहे हैं कि देखो तुम क्या हो। वो भक्त नहीं है लेकिन वो भी बोलता है कि भगवान सिखा रहे हैं दुनिया को। पूरी मानव सभ्यता क्या हो गई है, घुटने पे नहीं आ गई, अपना सर टेक दिया है। हाँ, बेचारा जो दिख भी नहीं रहा उसके सामने सर टेक दिया। तो पहले जो भी होते थे वो भगवान के पास जाते थे, और ब्रजवासी तो कितने भी असुर आए ब्रज में, वो सब भगवान की शरण लिए। सिर्फ एक असुर आया था, जो आया था भी नहीं भी आया था, हाउ बिलव, जो माता यशोदा का क्रिएशन था, तो असुर था ही नहीं, कृष्ण ने कभी देखा ही नहीं था, उस समय अलग बात है, बाकी सब असुर आए, ब्रजवासियों ने कृष्ण की शरण ली, भगवान नारायण की शरण। और क्या करती हैं, उत्पात की आशंका से उन्होंने इस भारीपन के शमन हेतु ब्राह्मणों को बुला भेजा, ब्राह्मणों को बुलाया, क्यों, ब्राह्मण मंत्र जप करेंगे। याद है आपको लीलामृत में, जब प्रभुपाद जी छोटे से थे तो स्कूल में उन्होंने खरबूज खाया था और खरबूज का बीज भी खा लिया था, खरबूज तरबूज था, तरबूज का बीज भी खा लिया, तो प्रभुपाद जी के जो क्लासमेट थे उन्होंने कहा तुम्हारा पेट में बीज गया ना, अभी पेड़ उग जाएगा। तो प्रभुपाद जी घबरा गए थे, छोटा सा बच्चा पेड़ उग जाएगा पेट में तो फिर, तो प्रभुपाद घबराते हुए अपनी माँ के पास आए, माता रजनी से कहते हैं कि मैंने ऐसा बीज खा लिया और अभी पेड़ उग जाएगा। तो माँ कह सकती है ना, ऐसा थोड़ी होता है, कुछ नहीं उगने वाला है। नहीं, देखो माता ने क्या कहा, माता ने बोला मैं भी एक मंत्र जप कर देती हूं और पेड़ नहीं उगेगा। छोटे से बालक प्रभुपाद, क्या सिस्टम में, कॉन्शियसनेस में बैठ जाता है वो, कि मंत्र जप करने से परेशानी दूर होती है। प्रभुपाद जी बोलते ये मेरा पहला इंटरेक्शन था नाम के साथ, कि मंत्र का पोटेंसी होता है। आज किसी को बोलो, मानते हैं लोग, नहीं मानते, ये जप करने से क्या होगा। प्रभुपाद जी का आज लेक्चर सुन रहा था, प्रभुपाद कहते हैं पूरे विश्व में लोग हरे कृष्ण जप कर रहे हैं और ये बंबई में, ये बॉम्बे में 1974 का लेक्चर प्रभुपाद जी का यहीं पे, बोले बंबई में लोग कंप्लेंट कर रहे हैं कि ये क्या जोर जोर से लोग कर रहे हैं, न्यूसेंस कंप्लेंट हुआ था ना, ये न्यूसेंस है। हम अभी पिछले हफ्ते प्रयास किए, मंत्रालय में गए, बड़े बड़े लोगों से मिले, कोशिश किए कि हमको होली नेम वीक के समय हम एक गाड़ी लेंगे अपना, उसमें थोड़ा स्पीकर डालेंगे और प्रभुपाद जी का टेप बजाते हुए पूरे बॉम्बे में घुमाएंगे 7 दिन के लिए। परमिशन लेने गए, इधर गए उधर गए, कुछ नहीं मिला। क्यों? बिकॉज वो सोचते हैं न्यूसेंस। और पूरे विश्व में लोग हरिनाम जप कर रहे हैं, हरिनाम से उद्धार होगा ये विश्वास ही नहीं है। प्रभुपाद जी बताते हैं जब प्लेग आया था 1898 में, प्रभुपाद 2 साल के थे, तो पूरे विश्व में प्लेग फैला था, तो उस समय एक साधु कलकत्ता में, एक साधु थे, वैष्णव थे, और उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र अकेले अपना करतार लेके, हरे कृष्ण महामंत्र लेके कीर्तन करना चालू किया। प्रभुपाद जी बोले सब लोग उनसे जुड़े, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बुद्धिस्ट हो, चाहे सिख हो, हर कोई जुड़ गया, पूरा शहर में हरिनाम हो गया और प्लेग खत्म हो गया। कितने लोगों को विश्वास है आज, हम कितने लोग जप कर रहे हैं और हमारा विश्वास है नाम पे। सिर्फ जप करना एक सुकृति दे सकता है, धीरे 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 बहुत टाइम लगेगा आगे बढ़ने में, लेकिन विश्वास के साथ श्रद्धा के साथ, भगवान गीता में बहुत बार ये शब्द का प्रयोग किए, श्रद्धा। तब वो बढ़ता है भक्ति में आगे। हम नाम तो जप कर रहे हैं 16 माला रोज, लेकिन कितना श्रद्धा है, क्योंकि नाम जप करते हुए भी हमको भौतिक संसार की चिंता लगी हुई है, तो नाम में श्रद्धा नहीं है। ये टाइम टू टाइम श्रील भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं हमको इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, हर एकादशी के दिन, कल एकादशी था, 15-15 दिन में देखना चाहिए मेरा नाम कैसे हो रहा है, मेरा चेतना किधर जा रहा है। अगर नाम जप करते करते हमको अपने घर परिवार और भौतिक चिंताओं का, आप ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, गृहस्थ हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम 2 घंटा तो हम भगवान को दे, उस समय हमारी भौतिक चिंताएं आ जाती हैं। तो मतलब नाम पे श्रद्धा नहीं है। किसी ने एक वीडियो भेजा था, उसमें 2 दोस्त आते हैं डॉक्टर के पास, तो एक जो उसका मित्र है उसको मुंह में कुछ दांत वात को चेक करना होता है, तो डॉक्टर बोलता है मुंह खोलो, तो जैसे ही वो मुंह खोलता है डॉक्टर टॉर्च जला के देखना चाहता है, तो दूसरा मित्र आके देखना क्या है, जैसे यहाँ पे एक मित्र बैठा है, यहाँ दूसरा है, यहाँ डॉक्टर है, डॉक्टर इधर से देखता है, ये देखने लग जाता है, डॉक्टर उसको साइड करता है, फिर बोलता है मुंह खोलो, फिर मुंह खोलता है, फिर ये देखने आ जाता है, डॉक्टर बोलता है तुमको बोल रहा हूं साइड में रहो, मेरे को देखने दो, फिर तीसरी बार डॉक्टर अपना टॉर्च रखता है, इसको खींच के कान के नीचे लगाता है कि मैं इलाज कर रहा हूं, मुझे करने दो ना, बीच बीच में क्यों गा रहे हो। तो जब हम हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हैं और कृष्ण सब कुछ कर रहे हैं, तो हम क्यों बीच में अपना टांग अड़ाते हैं, क्योंकि कृष्ण पे श्रद्धा नहीं है, विश्वास की कमी है। नाम में श्रद्धा की कमी है, इसीलिए नाम जप में टेस्ट नहीं आ रहा, इतने साल बाद भी नींद आती है। और देखो यहां पर विश्वास होना चाहिए और ये श्रद्धा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। कैसे होगा नाम में श्रद्धा, कृष्ण में श्रद्धा? कृष्ण के बारे में पढ़ने से, जब हम पढ़ेंगे कृष्ण लीलाओं को, जब भागवत पढ़ेंगे कि कैसे कृष्ण ने अलग अलग असुरों का वध किया, हर स्कंद में कृष्ण की लीलाएं हैं, जब वो पढ़ेंगे तो विश्वास होगा। ये तो धीरे 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 थोड़ा थोड़ा बढ़ाते जाए, तो 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, 100 साल हो जाए, 100 जन्म हो जाए। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, तबु तब पाए नहीं कृष्ण पदे प्रेम धन, चैतन्य चरितामृत में कहा गया। बहु जन्म करी यदि श्रवण कीर्तन, बहुत बहुत जन्मों तक श्रवण कीर्तन करते रहिए, तबु तब पाए नहीं कृष्ण पदे प्रेम धन, कृष्ण के चरणों में प्रेम धन नहीं मिलेगा, क्योंकि अपराध हो रहा है। तो अपराधों से बचना और श्रद्धा उत्पन्न करना देखना चाहिए, थोड़ा लॉजिक भी लगाना चाहिए कि जब ये भूमि, कोई भी भगवान का कोई अवतार ले लो, जैसे वराह अवतार, ये भूमि को रसातल पे डाल दिया था हिरणाक्ष ने, यानी हिरणाक्ष खुद कितना पावरफुल होगा कि भूमि को रसातल भेज दिया। आप सोचिए, तो हिरणाक्ष खुद कितना पावरफुल था, लेकिन भगवान भूमि को भी लेके आए और हिरणाक्ष को भी मार दिया, और उससे बड़ा राक्षस था, उसका बड़ा भाई, उसको भी मार दिया, नाखून से मार दिया। प्रभुपाद कहते हैं कितना प्लानिंग किया था हिरण्यकश्यपु ने, ऐसे नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा, ऐसे नहीं मरूंगा। फाइनली ये भी बोल दिया था ब्रह्मा जी को कि आपकी बनाई हुई किसी चीज से नहीं मरूंगा, लेकिन नाखून बोलना भूल गया। प्रभुपाद जी बोलते भूल गया था कि नाखून से भी मर सकता है। और नरसिंह आरती जब गाते हैं तो नखम बोला गया, मतलब एक नाखून से ही पूरा फाड़ दिए थे उसका पेट को। ये नखम शब्द आया है ना, एक नाखून से मार दिए उसको। तो जब इतने शक्तिशाली हैं भगवान, इतना वो प्रकट कर रहे हैं अपनी लीलाओं से, फिर भी श्रद्धा कहां आती है। भगवान वामन देव दो पग में पूरा ब्रह्मांड को नाप दिए। अब रेशियो निकाल लो उस ब्रह्मांड के सामने हम कितने छोटे हैं। ब्रह्मांड को दो पैर में नापने वाले प्रभु, तब तो विश्वास आना चाहिए ना। फिर भी विश्वास कहां पे होता है, इसीलिए भक्तिनाथ ठाकुर क्या कहते हैं, जड़ विद्या माया रा वैभव। ये क्योंकि जड़ विद्या ले लिया है ना हमने, जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है जड़ विद्या उतना तकलीफ है, और अगर श्रद्धा और विश्वास के साथ उसने पढ़ाई की है तो और ज्यादा तकलीफ। आप देख लीजिए भारत में वो शहर जहां पे सबसे ज्यादा कोचिंग्स होती हैं, कोटा विशाखापट्टनम, चार नियम सबसे ज्यादा वहीं टूटते हैं, क्राइम वहीं पे होता है। जहां पे जड़ विद्या बढ़ेगी चार नियम टूटेंगे। कर्ता भाव ना, बचपन से स्कूल में हमको क्या सिखाया, कर्ता भाव कर्ता भाव कर्ता भाव। कभी भी आपकी कोई टीचर ने यह विश्वास दिलाया कि बेटा तुम पढ़ो भगवान तुम्हारे साथ है, कभी कोई टीचर ने ऐसा विश्वास दिलाया, कभी बोला किसी टीचर ने, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, चे भगवान ज्ञान देंगे बेटा तुम थोड़ा पढ़ो तो सही। अगर बोल भी देती टीचर तो हम इतने जड़ बुद्धि हैं पूछ लेते कि भगवान कोचिंग इंस्टीट्यूट कहां पे है, कि भगवान कोई प्रोफेसर का नाम है तो मैं जाके उनसे कोचिंग लेता हूं। एक भक्त से अमेरिका में बात हो रहा था, होम ट्यूशन होम स्कूलिंग बहुत चल रहा है भक्तों में, होम स्कूलिंग अच्छा है। अभी एक बच्चा है वो स्कूल पास किया और कॉलेज में जाने वाला था, तो अभी लॉकडाउन हो गया ऑनलाइन पढ़ रहा है, तो उसके माता पिता खुश हैं, लेकिन बड़ी परेशानी क्या है, होम स्कूलिंग के साथ ट्यूशन कराना रहता तो उसके पीछे भागते रहते। तो ये जड़ विद्या में भक्तिनाथ ठाकुर कहते जितना बसेंगे जड़ विद्या क्या करता है, बनाए गाधा। उतना भक्ति करने में तकलीफ होता है, आप देख लीजिए। प्रभुपाद जी इसीलिए कहे कि दिस मॉडर्न एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स आर स्लॉटर हाउस, ये कत्ल खाने। किस चीज का कत्ल करते हैं, हमारी चेतना का कत्ल करते हैं। हमारी चेतना का कत्ल किया जाता है, शरीर को नहीं मारा जाता। क्या करते हैं चेतना का कत्ल करके, वो आपको प्रूव कर देते हैं कि आपको सबको पछाड़ते हुए आगे निकलना है। और भक्ति में सिखाया जाता है सबको आगे करो, खुद पीछे रहो। तो अभी कितना टाइम लगेगा शुद्ध होने में, सोचिए। भौतिक संसार में हमको ईगो बढ़ाने बोलते हैं, यहां पे ह्यूमिलिटी बढ़ाने बोलते हैं, दोनों ऑपोजिट एंड है। स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया स्कूल कॉलेज में पढ़ाया गया कि आप सबसे आगे निकल जाओ, सबको पछाड़ दो। और यहां पे क्या बोला जाता है, सबको सेवा करो। सबको सेवा करो। भागवतम में दो बार ये लाइन आई है, अहम पूर्वम न त्वम न त्वम, ये दो बार बोली गई है लाइन। एक बार अष्टम स्कंद जब मोहिनी मूर्ति आती है, सब असुर लोग अहम पूर्वम मैं जाऊंगा पहले, तो असुर का मेंटेलिटी ये होता है। और यही अहम पूर्वम बोला गया है शायद 15वें अध्याय में 10th कैंटो के, जब कृष्ण दूर हो जाते हैं और गोप सखा दौड़ने लगते हैं, मैं पहले छूंगा। अब बाहर बजाया जाता है अहम पूर्वम, सबको गोली मारो, मैं आगे जाऊंगा। और यहां पे क्या है, अहम पूर्वम मुझे पहले सेवा दो, मैं ज्यादा सेवा करूंगा। पूरा उल्टा हो गया। तो इसीलिए वो जो चेतना को हम लेके आते हैं तकलीफ होती है। एक वरिष्ठ भक्त से हम बात कर रहे थे, तो कहते हैं कि मैंने पूछा कि प्रभुपाद जी के समय में, अभी के समय में जो युद्ध तो अभी भी है, तभी भी थे, फर्क क्या है, क्या फर्क है तब के और अब के जो भक्त जुड़ते हैं। बोले एक चीज की कमी है आज। बोले क्या, शरणागति। आज के नवयुवक शरणागति लेना ही नहीं चाहते। वो सोचते हैं, हाँ महाराज एक शब्द यूज करते हैं, ओवर स्मार्ट। दे थिंक दे आर ओवर स्मार्ट। एक प्रश्न पूछा गया था पढ़े लिखे लोगों का, बिकॉज ये है हमारा, हम भी पढ़े हैं, बचपन में हमसे गलती हो जाती थी घर में, तो हमको बोला जाता था पढ़ा लिखा गंवार। अब समझ में आ रहा है, पढ़ा लिखा भौतिक संसार में भक्ति में गंवार हो गए। ऐसा नहीं है कि सब ऐसे होंगे, बहुत सारे अच्छे भक्त भी हैं, लेकिन ये अटकता है। तो हमको समझना चाहिए कि भक्ति में तो आ गए, लेकिन जब तक सरेंडर का भाव नहीं आएगा तब तक भक्ति में आगे नहीं बढ़ेंगे। ये जब तक नहीं होगा, नाम में श्रद्धा नहीं आएगी, कृष्ण में विश्वास नहीं होगा, भक्तों की शरण नहीं लेंगे, क्योंकि हमको लगता है वी आर इंटेलिजेंट, हम कर सकते हैं। और इसीलिए बहुत सारे सीनियर भक्त भी कहते हैं कि नए नए भक्त आ जाते हैं, लेकिन उनको वैष्णव एटिकेट या रिस्पेक्ट करना क्योंकि बड़ा मुश्किल होता है, क्या करोगे उनको सिखाना। महाराज बता सकते हैं, इतने सालों से इस्कॉन में हर जनरेशन को देखते आ रहे हैं, क्या फर्क है। प्रभुपाद जी के तो शिष्यों में हार्डली कोई ज्यादा पढ़ा लिखा था। एनीवेज वो एक अलग जमाना था, वो एक अलग वक्त था, सबके सब सरेंडर हो जाते थे। तो ब्राह्मणों के पास जाती है, ब्राह्मण मंत्र बोलेगा और कृष्ण ठीक हो जाएंगे। देखिए मंत्र का पावर। और स्वयं लग गई घर के कामकाज में। यशोदा को भेज दिया कृष्ण ने, जाओ मैया तुम किचन संभालो, मैं इसको संभालता हूं। ये आने वाला है अभी। बहुत सुंदर आगे वर्णन है, बहुत शिक्षाएं हैं ये तृणावर्त का वध में, हर लीला में शिक्षा है, तृणावर्त का वध में बहुत शिक्षाएं आएंगी आगे, हर श्लोक में शिक्षा है। तो हमको समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और विश्वास लाना चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए। आजकल तो छोटा छोटे बच्चे लोग को माँ बाप पे श्रद्धा नहीं रही कि माँ बाप हमारा देखभाल कर सकते हैं, वो अपना दिमाग लगाने लगते हैं। ठीक, तो हमने देखा आज कि कैसे तृणाव्रत आने वाला है, कल कल के श्लोक में आएगा, एंट्री लेगा वृंदावन में, और भगवान जो है वो यशोदा से अलग होना चाहते हैं, क्योंकि यशोदा यशोदया है, यशोदा के साथ नहीं मार पाएंगे, तो भारी हो गए। क्यों भारी हो गए, हमने देखे कुछ कारण, भगवान अक्षर हैं, मात्रा के साथ आके भारी हो गए, दूसरा वायु अस्त्र आ रहा है तो भगवान पर्वत अस्त्र हो गए, और जब भारी हो गए तो यशोदा माता चकित हो गई, और चकित होके भगवान नारायण को पुकारा और कृष्ण को भूमि पे रख दिया, क्योंकि भूमि भी हमारी एक मां होती है तो वो पाल लेगी, और फिर चली गई, ब्राह्मणों को बुलाने भेजा, किसी को जाओ ब्राह्मणों को बुलाओ, कुछ मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा, मंत्र उच्चारण तो होगा, तृणावर्त की मृत्यु के बाद फिर मंत्र डाले जाएंगे, हर बार कृष्ण को मंत्रों से बचाया गया, क्योंकि यशोदा नहीं जानती ना कि ये कौन है, मूल स्रोत है, और खुद चली गई घर के काम में। अब कल आएगा तृणाव्रत, हरे कृष्ण। तो किसी भक्त का कोई कमेंट, महाराज कुछ बोलना चाहेंगे, महाराज को माइक, कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन, हल्दर के बाबू,
हरे कृष्ण प्रोजी। प्रोजी हम इस चीज को कैसे समझे, जैसे कि आपने बताया कि जब जप में नींद आती है और हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो हमें श्रद्धा की कमी है, नहीं तो हम जप में नहीं सोते थे, लेकिन हम ऐसा भी सुनते हैं कि जैसे कि हम में श्रद्धा है तभी हम साधु संघ का प्रयास कर रहे हैं, और श्रद्धा है तभी हम रोज सुबह उठ रहे हैं और सोलह माला करने का स्ट्रगल कर रहे हैं, अगर श्रद्धा नहीं रहती थी तो हम यहाँ पे नहीं रहते थे, हम और कहीं और होते थे, तो श्रद्धा है भी, और फिर हम ऐसा कैसे समझे कि जप में नींद आती है और श्रद्धा नहीं है।
अच्छा प्रश्न है। तो जप में सोने के बहुत सारे कारण हैं, उसमें से एक ये है कि नाम की महिमा को नहीं जानते हम, इसीलिए सीरियस नहीं लेते। आप कितने भी थके होंगे, किसी चीज की महिमा को जानेंगे तो उसको करेंगे, ठीक है, तो ये एक कारण है। अब जो आप बोल रहे हैं कि श्रद्धा है, सही बात है, अगर श्रद्धा नहीं होती तो हम यहां तक नहीं पहुंचते, लेकिन वो आदो श्रद्धा है ना, तो हम ये नहीं बोले कि श्रद्धा नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं है, मतलब सफिशिएंट नहीं है। ये जो 9 भक्ति के स्टेजेस हैं, आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम, ये क्या है, ये सिर्फ श्रद्धा के लेवल है और कुछ नहीं है। नाम अलग अलग हैं, लेकिन श्रद्धा के लेवल हैं। प्रेम जो है पूर्ण विश्वास, 100% श्रद्धा है। भाव जो है 100 से कम है, रुचि जो है और कम है, आसक्ति जो है और कम है, निष्ठा जो है प्रभुपाद जी कहते हैं 75%। हृदय शुद्ध हो जाता है तब निष्ठा पे पहुंचते हैं। तो अगर आधो श्रद्धा पे ही रहेंगे तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, जितनी श्रद्धा है उसके कारण आए हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, ब्रह्मचारी जीवन लिया है, सब कुछ छोड़ के गुरु के आश्रम में रह के गुरु की सेवा कर रहे हैं, गुरु स्वीकार किया, दीक्षा लिया, सब कर रहे हैं और प्रयास भी कर रहे हैं शुद्ध होने का, लेकिन इसमें कोई लिमिट नहीं है कितना करना चाहिए। तो ये कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि जीरो श्रद्धा है, जीरो श्रद्धा होती तो यहां नहीं बैठे होते हम, लेकिन श्रद्धा की कमी है। श्रद्धा की कमी नहीं होती तो पर्सनालिटी में, वो व्यक्ति में दिख जाता है, श्रद्धा की कमी तो है, इतना तो हम मानते हैं, तो उसको बढ़ाना है। हम ये नहीं बोल रहे श्रद्धा जीरो है, नहीं तो यहां बैठे नहीं रहते। सही बात है, आधो श्रद्धा तो है, लेकिन उसको आगे बढ़ाना चाहिए। और इसीलिए भागवत पढ़ना चाहिए, भगवान की महिमा, भगवान के नाम की महिमा को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और डिस्कस करना चाहिए भक्तों में परस्पर। यस प्रभु जी, ठीक है।
हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत अच्छा समझाया। दो शब्द है जो कि दो लाइन, और उसके बाद प्रभुपाद जी वर्ल्ड हरि नाम के बारे में बताए, मगर दो लाइन मेरे को समझ में नहीं आया, दो कि महापुरुषम
ये बताया ना मैंने कि महापुरुष मतलब भगवान, महापुरुष आदद्यव भगवान की शरण ली, महापुरुष मतलब भगवान नारायण, आदद्यव मतलब यशोदा ने शरण ली। उसके बाद जगताम कर्मसु, जगताम आस कर्मसु, तो जगताम मतलब मान लीजिए कि कृष्ण जो है पूरे जगत के जैसे भारी हो गए, तो ये हमने बताया। आस कर्मसु, आस मतलब सेवा में लग गई, अपने आप को व्यस्त कर दिया, कर्मसु घर के कार्य में। तो ये लास्ट का दो लाइन ये है कि महापुरुष की शरण ली, महापुरुष भगवान नारायण है, जगताम मतलब भगवान कृष्ण जो कि जगत के जैसे पूरे भारी हो गए, आस माता ने भूमि पे रख के, भूमो निदाय तम गोपी, भूमि पे रख के भगवान को वो क्या की, आस मतलब अपने आप को व्यस्त कर लिया, किसमें, कर्मसु घर के अन्य कर्मों में। ठीक है, यस।
हरे कृष्ण, थैंक यू ब्रोजी फॉर द वंडरफुल क्लास। हमने शुरुआत में चिंता के बारे में बता रहे थे कि कैसे एक भक्त को चिंता लेना चाहिए, चाहे मंदिर का देखभाल करने में या फिर प्रचार में। तो चिंता, स्ट्रेस, एंजाइटी बोल सकते हैं। तो एक यू स्ट्रेस होता है, एक डिस्ट्रेस होता है। तो अक्सर हम चिंता करते हैं तो डिस्ट्रेस में परिवर्तन हो जाता है, तो रजोगुण के प्रभाव में भी आ सकते हैं हम। बहुत ज्यादा चिंता हो जाती है व्यक्ति को, तो क्रोध उत्पन्न हो जाता है कभी कभी, तो सबको उड़ाते हैं हम फिर, यू नो, क्रोध के चलते। तो कैसे हम ये चिंता को, यू नो, स्टेबल रखें कि मैं भक्ति करते रहूं, और क्योंकि ज्यादा हम कर भी नहीं सकते, तो क्या है वो बार, कैसे पता चलेगा?
तो चिंता का प्रभु जी ने अच्छा एनालिसिस किया है कि एक हेल्दी चिंता होती है, एक अनहेल्दी चिंता होती है। अगर कृष्ण से संबंधित आपकी चिंता है और कृष्ण को केंद्र में रख कर आपकी चिंता है, तो कभी सतोगुणी, कभी वो गुणों से प्रभावित नहीं होगी। चिंतक कृष्ण के लिए चिंता है लेकिन आपको केंद्र में रख के है, तो रजोगुणी है, शुद्ध करेगी। अब समझे, कृष्ण के लिए चिंता कर रहे हो लेकिन कृष्ण को ही केंद्र में रखे हो। प्रभुपाद जी कृष्ण को केंद्र में रखे, कृष्ण की चिंता किए, कितना हाइपर माहौल बन जाता था, इंटेंस। 1974 जन्माष्टमी टेंपल ओपनिंग, कृष्ण बलराम पढ़ो, वो तो एक एग्जाम्पल है। लेकिन कृष्ण केंद्र में है, इसीलिए प्रभुपाद जी को प्रभाव नहीं कर पा। हम लोगों का क्या है, हम चिंता लेते भी हैं कृष्ण की, तो अपने को केंद्र में रख के। तो वो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है, लेकिन वो भी ठीक है, कम से कम कृष्ण की तो चिंता लिया। बुक डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ठीक है, लेकिन फोकस कि मेरा स्कोर इतना होना चाहिए, तो ये स्ट्रेस डिस्ट्रेस हो जाता है, क्योंकि केंद्र आप हो गए, कृष्ण नहीं है। बुक डिस्ट्रीब्यूशन तो कृष्ण के लिए कर रहे हो, प्रचार कृष्ण के लिए कर रहे हो, लेकिन केंद्र खुद बन गए, आचार्य बन गए, तो वहां पर प्रॉब्लम होती है। और तीसरा कैटेगरी, कृष्ण के लिए चिंता ही नहीं कर रहा, मंदिर में रहते हुए भी कृष्ण के लिए कोई चिंता ही नहीं कर रहा, वो तमोगुण है, पता ही नहीं, होश ही नहीं। सिंपल सी चीज है, आप मंगल आरती के बाद जाइए 5:15 बजे आश्रम में, तो कभी कभी लाइट, भक्त लोग जल्दी जल्दी लाइट खुला छोड़ाते हैं, तो आप जाइए। अब आप लाइट बंद कर दिए कि देखो भगवान का पैसा बचना चाहिए, प्रभुपाद जी कहे इस्कॉन का जो पैसा है वो मेरा खून है, तो बचना चाहिए, ठीक है, सब लाइट मैंने बंद कर दी, आके शांति से भजन किया। ये भगवान की चिंता की भगवान को केंद्र में रखते हुए, ये पहला। आपने लाइट बंद की और आके चार पांच लोगों को डांट दिया, ऐसा करते हो ऐसा करते हो, सब लोग जब कर रहे हैं ऐसा करते हो ऐसा करते हो ऐसा करते हो, माइक लेके हल्ला करना चालू कर दिया, तो आपने भगवान की चिंता की लेकिन केंद्र में अपने आप को रख दिया, इसलिए रजोगुण से प्रभावित हो गए आप, गुस्सा आ गया। और देख रहा है कि 20-25 लाइट चालू है, हाँ, जपमाला लेने के लिए रूम पे जाता है, लाइट चालू है, कितना जगमग है, कितना अच्छा दिख रहा है, और आ जाता है हरे कृष्ण ये तमोगुण है, तो हो पता ही नहीं ना क्या है, क्यों लाइट चालू है, बंद करो, क्यों एक्स्ट्रा लाइट चालू, सिंपल एग्जांपल आई एम टेकिंग, क्यों लाइट चालू है बंद कर दो, कितना टाइम लगेगा, तो कृष्ण की चिंता ही नहीं है उसको। तो तीन लेवल आपने दो बताया, मैंने तीन कर दिए। केंद्र को कृष्ण में रखोगे तो लड़ भी जाओगे ना तो भी रजोगुण से प्रभावित नहीं होगे। हनुमान जी प्रभावित हुए, पूरा लंका जला दिया अपना पूछ, कितना गुस्सा किए होंगे, कितना गुस्सा आया होगा जब रावण आके माता सीता को बुरा भला बोल रहा था, हनुमान जी देख रहे थे ना, कितना गुस्सा आया होगा भगवान के भक्त को, सोचो। यहां पे कोई व्यक्ति आके भगवान राधा रास बिहारी के बारे में कुछ बोले, आपको गुस्सा नहीं आएगा, तो हनुमान जी को कितना गुस्सा आया होगा। लेकिन केंद्र में तो राम को ही रखे ना, इसलिए प्रभावित नहीं हुआ। हम प्रभावित हो जाते हैं क्योंकि हम अपनी सेवा से आसक्त होते हैं, सोचते हुए कि ये मेरी सेवा है, मैं करूंगा, मैं करता हूं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं, डोंट बिकम अटैच्ड टू सर्विस, बिकम अटैच्ड टू सर्विंग कृष्णा, दैट्स द डिफरेंस। तो वो रजोगुण है क्योंकि केंद्र में आप हो गए, भले कर रहे भगवान के लिए सेवा लेकिन फिर भी ठीक है, शुद्ध हो जाएगा, कर तो रहा है, तीसरे कैटेगरी से तो अच्छा है, जिसको होश ही नहीं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, उससे ये अच्छा है और उससे अच्छा है। तो प्रोग्रेसिव भक्ति एक प्रोग्रेसिव पाथ है, लेकिन उस प्रोग्रेसिव पाथ में हम चलना चाहिए, फिर डिस्ट्रेस कभी नहीं होगा आपको, सतोगुण में रहेगा। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।